नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से हबक्कूक नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
रिमझिम रिमझिम प्यार की बरखा क्रूस से बरसी है आज। रिमझिम रिमझिम प्यार की बरखा क्रूस से बरसी है आज। खून में नहाए रहम और माफी की मेघा बरसी है आज, मेघा बरसी है आज। रिमझिम रिमझिम प्यार की बरखा क्रूस से बरसी है आज। लौट के आजा चरणों में उसके, मौका ये खोना ना आज। लौट के आजा चरणों में उसके, मौका ये खोना ना। बदली बरसी है आज।
जीवन भरिए बदली बरसी है आ खून में नहाए रहम और माफ़ी की मेघा बरसी है
प्रिय मित्र प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता के निकटता में रहते हुए अपने प्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक में से हबकूक नबी के पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि हबकूक परमेश्वर से प्रश्न करता है और परमेश्वर उसके प्रश्नों का उत्तर भी देता है। तो आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके सामर्थ्य और जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। आज जब हम हबकूक की पुस्तक से अपने अध्ययन को कर रहे हैं और हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है पिताजी कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय जंगल में, पहाड़ों में, गांव और शहरों में बैठकर आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के हृदय में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनकी जरूरत की बातों को उन्हें दिखाने पाए। पिताजी, आज की इस घड़ी हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप हम सब की सहायता करें और इसी के साथ हमारे उन प्रिय श्रोताओं को भी याद करते हैं जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, भय में हैं। पिताजी, आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, अपनी शांति उन्हें दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, ताकि प्रत्येक जीवन आप में धन्य होने पाए। आज के वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम हबकूक की पुस्तक से देख रहे हैं जहां पर परमेश्वर ने हबकूक पर प्रकट किया है कि वह दूर बैठा तमाशा नहीं देख रहा है, वह अवसर देता है परंतु मनुष्य यह न समझे कि वह बेजान और चुपचाप बैठा है। वह कहता है, अपने चारों ओर देख, मैं फरात नदी के तीर पर एक जाति कसदी को तैयार कर रहा हूं, उपद्रव और क्रूरता में उनका कोई जोड़ नहीं है, वे न तो राजाओं का और न ही हाकिमों का मान रखते हैं और न ही गढ़ वाले नगरों की चिंता करते हैं, वे भेड़ियों और उकाबों के समान झपटते हैं, उनको रोक पाना असंभव होता है। बेबीलोन की सेना भूखे भेड़ियों के समान और खूंखार चिड़ियों के समान अपने शिकार पर टूट पड़ती थी। कसदियों, बेबीलोनियों का और वहां के वासियों का यही कहानी है। मेरे प्रियो, आइए हम अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हबकूक एक अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं, सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बढ़े चले जाते हैं और बंदियों को बालू के किनको के समान बटोरते हैं। लिखा है, वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। परमेश्वर के लोग उपद्रव करते थे, परंतु उन्होंने अभी तक कुछ नहीं देखा था। बेबीलोन की सेना के आने पर परमेश्वर उन्हें बताएगा कि उपद्रव क्या होता है। मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। इसे हम गलातियों की पत्री 6:7 में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बढ़े चले जाते हैं, अर्थात बैरी को रोकना असंभव है। नबूकदनेस्सर ने 3 यरूशलेम पर चढ़ाई की। 3री बार उसने यरूशलेम और मंदिर को जला दिया था और बचे हुए नागरिकों को बंदी बनाकर वह अपने साथ ले गया था। उनका एक ही उद्देश्य होता था, अधिक से अधिक देशों को जीतो और अधिक से अधिक दास बनाओ। यहूदा के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था। हबकूक की पुस्तक 1:10 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, राजाओं को वे ठट्ठों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। राजाओं को वे ठट्ठों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे अपने भुजबल और अपने देवताओं पर विश्वास रखते थे। वे असुरों की नाई घमंड से भरे हुए चलते थे। मेरे मित्रों, लिखा है, वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे दमदमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। वे शहर पनाह वाले नगरों को जीतने के लिए बांध बनाते थे और जब कोई देश समर्पण करता था तब वे उन्हें बंदी बना करके ले जाते थे। हम हबकूक 1 उसके 11 में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब वे वायु के समान चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। नबूकदनेस्सर ने ठीक ऐसा ही किया। दानियल नबी की पुस्तक 4:30 में हम राजा नबूकदनेस्सर के वचन को पढ़ते हैं। कहता है, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। वह घमंड से भरा हुआ था, अहंकारी था। वह केवल अपने आप को मानता था, परमेश्वर को भी वह नहीं मानता था। मेरे प्रियो, आज भी ऐसे कुछ लोग हमारे मध्य में हैं जो परमेश्वर की अपेक्षा अपने ऊपर ही भरोसा रखते हैं। हम में दीनता की कमी है। राजा नबूकदनेस्सर का मानसिक संतुलन सही नहीं था। हम अपनी योग्यता, क्षमता और बुद्धि पर निर्भर करते हैं। मैं तो कुछ टीवी कार्यक्रम भी नहीं सुनता या देखता, क्योंकि सभी डींग मार हैं। उपलब्धियां तो उनकी वास्तव में कुछ भी नहीं है, परंतु वे बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, फल कुछ नहीं होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहां हबकूक से कहता है, तू सोचता है कि मैं इनके पापों के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं फरात नदी के तट पर एक राष्ट्र को तैयार कर रहा हूं, और यदि इन लोगों ने मन नहीं फिराया तो मैं बेबीलोन वासियों को इन पर आने दूंगा। जी हां, अंततः वे आए और इतिहास गवाह है कि उनके द्वारा यरूशलेम का विनाश भयानक और निर्दयता से पूर्ण था। उनके कुछ निर्दयता के काम तो वर्णन से परे हैं। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं कि हबकूक की दूसरी समस्या क्या है। परमेश्वर ने हबकूक से कहा कि वह बेबीलोन को अपने प्रजा के दंड के लिए तैयार कर रहा है, तो हबकूक के मन में एक और प्रश्न उठा, आप सोचेंगे कि इसका पहला प्रश्न एक गंभीर प्रश्न था, तो यह और इससे अधिक गंभीर होगा। आइए हम पढ़ें हबकूक एक अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं है? इस कारण हम लोग नहीं मरने के। हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। परमेश्वर एक अधिक दुष्ट राज्य को कम दुष्ट राज्य के दंड के लिए क्यों काम में लेता है? परमेश्वर ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय उसके 5 पद में अशूरों को परमेश्वर दंड के लाठी कहा गया है। परमेश्वर ने उत्तरी राज्य को दंड देने के लिए अशूरों को कोड़ा बनाया था। अशूरों को अपने दंड का साधन बनाने के बाद परमेश्वर ने उन्हें उनके पापों का भी दंड दिया। यहां भी परमेश्वर एक दुष्ट राज्य को यहूदा के दंड के निमित्त काम में लेता है, परंतु अपने प्रयोजन पूर्ति के बाद वह उन्हें दंड देगा, और उसने ऐसा ही किया। मेरे प्रियो, वह मनुष्य की गतिविधियों में अपना हाथ रखता है। यहां पर समस्या यह है, एक पवित्र परमेश्वर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी पापी देश को कैसे काम में ले सकता है? मेरे मित्रों, आपको यह एक नई एवं विचित्र बात प्रतीत होती होगी, परंतु परमेश्वर ने धर्मशास्त्र में ऐसा ही किया है। बड़े पापी के द्वारा छोटे पापी को दंड दिलवाया है। आज भी क्या परमेश्वर किसी देश को अभक्ति और पाप प्रदर्शन करने देगा? आप सुनिए हबकूक के प्रश्न को, सुने कि वो क्या कहता है। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादि काल से नहीं है? परमेश्वर समय के पूर्व से है, कहता है हे मेरे पवित्र परमेश्वर। दूसरे शब्दों में वह कहता है कि तू एक पवित्र परमेश्वर है, तू बेबीलोन जैसे राष्ट्र को कैसे अपना साधन बना सकता है? हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वे हमारे विरुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वे तो हमसे सद्भाव निभा रहे थे। हिजकिया जब रोगी था, तब उनके राजदूत उसके पास आए थे और उसने उनका भव्य स्वागत किया था, यहां तक कि उसने उन्हें अपना सारा खजाना दिखा दिया था। उन्होंने यहूदा को लूटने की उसी समय ठान ली थी। हबकूक ने उनकी इस मंशा के बारे में कभी नहीं सोचा था, और न ही कभी सोचा कि परमेश्वर उन्हीं के द्वारा यहूदा को दंड देगा। उसने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर ऐसा काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वह पवित्र परमेश्वर है। उसका सोचना था कि परमेश्वर दुष्टों के द्वारा अपने लोगों को दंड नहीं देगा। आगे हम पढ़ते हैं, इस कारण हम लोग नहीं मरने के। वह अब्राहम, इसहाक और याकूब को दी गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा का स्मरण करता है। परमेश्वर ने मूसा, यहोशू और दाऊद से प्रतिज्ञा की थी। उसने हबकूक से पूर्व के भविष्यद्वक्ताओं से कहा था कि वह उन्हें नष्ट नहीं होने देगा, इसलिए वह कहता है कि हम लोग नहीं मरने के। मेरे प्रियो, यह वाक्य उन लोगों के लिए एक अच्छा प्रतिवाद है जो कहते हैं कि परमेश्वर ने इसराइल के साथ व्यवहार समाप्त कर दिया है। परमेश्वर को उनसे वैसा ही अनंत उद्देश्य है जैसा कलीसिया से है, जिसे वह इस संसार से बुला रहा है, तैयार कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम नहीं मरने के। प्रभु यीशु आपके और मेरे स्थान में मरने के लिए आया था, और वह मर भी गया। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और वह मरकर फिर जी उठा। रोमियो की पत्री 4:25 में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। प्रभु यीशु ने लाजर की मृत्यु पर विलाप करते हुए उसकी बहनों से कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन वह है। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यूहन्ना 11:25 उसके 25 और 26 में हम इसे पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, यह सुसमाचार है, यह हमारे विश्वास के लिए है। शरीर से तो आप एक दिन मरेंगे ही, परंतु आज क्या आप आत्मा में मरे हुए हैं? यदि हाँ, तो आप अनंत काल तक अपने अपराधों और पापों में मरे हुए रहेंगे। इसका अर्थ है परमेश्वर से सदा का वियोग। परमेश्वर पवित्र है, वह पाप को स्वर्ग में नहीं आने देता है, परंतु उसने यह प्रतिज्ञा की है, यदि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु में विश्वास करें तो वह हमें अनंत जीवन देगा। जी हाँ, परमेश्वर कहता है, यदि तू यह मान ले कि तू पापी है और उद्धार के योग्य नहीं और न ही उद्धार को कर्मों द्वारा पा सकता है, तो मैं तुझे निर्मोल उद्धार का वरदान देता हूँ। तू मेरे अनुग्रह से उद्धार पाएगा, तू अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। मेरे प्रियो, क्या आपके पास पुत्र है? यदि है तो आपके पास अनंत जीवन है, आप मरेंगे नहीं। और यदि पुत्र नहीं है तो निश्चय ही आपके पास जीवन है, अर्थात आप मरेंगे। बिना जीवन के आपको मरना ही है। हबकूक की समझ में फेर नहीं था जब वह कहता है, हम लोग नहीं मरने के, परंतु वह इस संसार में परमेश्वर के कामों को समझ नहीं पा रहा था, जैसे हम भी आज नहीं समझते हैं। परमेश्वर ने हबकूक से पहले कहा था कि वह परिदृश्य को समझे। आज हमें वरीयता प्राप्त है क्योंकि हमारे पास इतिहास है। हम हबकूक को तो क्या मानव जाति का आरंभ ही जान सकते हैं। संसार के राज्यों के साथ, इसराइल के साथ परमेश्वर का व्यवहार हम जान सकते हैं। आज परमेश्वर इस संसार में अपनी कलीसिया के साथ व्यवहार कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आश्चर्य कम करने के लिए रहस्यमय तरीके से काम करता है। उसने स्पष्ट कहा है, यशायाह नबी की पुस्तक 55:8-9 में, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जी हाँ, यदि आपके विचार परमेश्वर के विचारों से मेल नहीं खाते तो अचंभा न करें, क्योंकि आप परमेश्वर नहीं हैं। कुछ लोग परमेश्वर का स्थान लेना चाहते हैं, वे कर्मों द्वारा उद्धार पाना चाहते हैं, वे सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें शाबाशी देगा, परंतु सच तो यह है कि वे पापी ही हैं। आपको परमेश्वर के मार्ग से ही उसके पास आना होगा, अन्यथा आप उससे दूर हैं। दूसरों को समस्याओं का दोष देने की अपेक्षा हमने परमेश्वर के समक्ष अपने घुटने टेकने होंगे। हमें अपने पापों को स्वीकार करना होगा। प्रभु मेरा भाई या मेरी बहन नहीं, मैं हूं जिसे प्रार्थना की आवश्यकता है। जी हाँ, हबकूक के युग में यहूदा की यही दशा थी। हबकूक ने परमेश्वर से कहा, हम लोग नहीं मरने के, हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हबकूक बेबीलोन पर उंगली उठा रहा था कि वे बुरे हैं, हम अच्छे हैं। मेरे प्रियो, मुझे एक सभा में सीखने का अवसर मिला कि मनुष्य का दृष्टिकोण कैसा होता है। एक आदिवासी प्रचारक ने कहा, जब फिरंगी किसी जाति का नरसंहार करते थे तो वह विजय कहलाती थी, और जब कोई आदिवासी किसी अंग्रेज की हत्या करता तो उसे अपराध कहते थे। हम अपने को अच्छा कहते हैं, दूसरों को बुरा कहते हैं। लिखा है, हे चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको बैठाया है। दूसरे शब्दों में हबक्कू कहता है कि बुरे तो वे हैं, हम नहीं, इसलिए उन्हें दंड दे और सुधार। हबक्कूक भूल गया कि वही तो परमेश्वर से शिकायत कर रहा था कि वह यहूदा के अधर्म के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मेरे मित्रों, आज हम भी कई बार परमेश्वर के सम्मुख शिकायत करते हैं और यह भूल जाते हैं कि हम स्वयं ही पापी हैं और हमें भी दंड की आवश्यकता है, परंतु हम स्वयं के लिए दंड नहीं मांगते, दूसरों के लिए दंड मांगते हैं। यही मनुष्य का स्वभाव है। मेरे प्रियो, आज हम इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को, अपने जीवन को जांच करके देखें कि हम कहाँ हैं। क्या आज हम दोष लगाने वालों में से हैं? यदि आज आप दोष लगा रहे हैं तो आप अपने जीवन की ओर झांक करके देखें कि क्या आपके जीवन में पाप नहीं है। यदि है तो परमेश्वर के सामने उससे आपको मानने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है, ताकि वह आपको क्षमा कर अनंत जीवन दे सके। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आप सबकी सहायता करे और बलवंत बनते जाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, प्रभु तेरे चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा।